ग्रामीण परिवेश की नारियों के विविध रूप, पृष्ठ संख्या 103। उपर्युक्त चर्चित उपन्यासों के प्रकाश में नारी के विभिन्न रूपों का विश्लेषण हम निम्नलिखित कतिपय आधारों पर कर सकते हैं। पहला, अवस्था के आधार पर। दूसरा, जाति के आधार पर। तीसरा, वर्गगत आधार पर। चौथा, धर्मगत आधार पर। पांचवा, शिक्षा के आधार पर। छठवां, रूढ़िचुस्त और रूढ़िमुक्तता के आधार पर। पृष्ठ संख्या 104। पहला, अवस्था के आधार पर। अवस्था, वय या उम्र के अनुसार स्त्री के रूप, विचार और व्यक्तित्व में अंतर पाया जाता है। अवस्था की दृष्टि से विचार करें तो नारी के बालिका, किशोरी, युवती, प्रौढ़ा और वृद्धा आदि रूप मिलते हैं। पहला, बालिका। उपर्युक्त में से हिंदी ग्राम्यांचल उपन्यासों में अधिकांश बालिका को छोड़कर अन्य रूपों की चर्चा विशेष रूप समुपलब्ध होती है। मुख्य या स्वतंत्र पात्रों के रूप में नारी के बालिका रूप की चर्चा बहुत कम हुई है। उपन्यासों में जहाँ कहीं भी नारी की बाल्यावस्था का चित्रण हुआ भी है, वहाँ उपन्यास में पाए जाने वाले नारी पात्रों के अतीत की कथा के रूप में। जिस प्रकार मन्नू भंडारी कृत आपका बंटी तथा जिस प्रकार कृष्ण बलदेव वैद्य कृत उसका बचपन में कथा केंद्र में बालक रहा, उसी प्रकार बालिका को केंद्र में रखकर लिखा गया हो, ऐसा उपन्यास आया ही नहीं। बालिकाओं के पात्र प्राय गौण पात्रों के रूप में ही आए हैं। कृष्ण बलदेव वैद्य के उपन्यास उसका बचपन के केंद्र में तो वीरू नामक एक लड़का है, परंतु गौण पात्रों के रूप में उसकी बहन तथा उसके साथ मोहल्ले के बच्चों में खेलने वाली कुछ बालिकाएं हैं। यहाँ लेखक ने विपन्नता के कारण बच्चों की जो अवमानना होती है और उनके कोमल हृदयों पर जो आघात होता है उसको संकेतित किया है। गरीबी के कारण घर में आटा, नमक, दाल, चीनी, चाय पत्ती, दूध जैसी चीज़ों की प्राय किल्लत हो जाती है और तब बच्चों को, विशेषतः लड़की को, पास पड़ोस में इन चीज़ों को मांगने के लिए भेजा जाता है। पड़ोसी भी इन बच्चियों को हिकारत से देखते हैं। पैराग्राफ चेंज। नारी का यह बालिका स्वरूप जैसा कि उपनिर्दिष्ट किया गया, गौण रूप में सांप और सीढ़ी, कालिंदी, 14 फेरे, सफेद मेमने, इदम नमम, एक मूठ सरसों, कांच घर, कैजा, धरती धन्ना अपना, आधा गांव आदि उपन्यासों में मिलता है। सांप और सीढ़ी की डोली का बचपन धान माँ के संरक्षण और प्रेम में भली भांति व्यतीत होता है। यह डोली आगे चलकर युवावस्था में अपनी माँ को छोड़कर एक अधिकारी से विवाह कर लेती है। इस उपन्यास में मन की जैसी और बालिकाएं भी आई हैं, परंतु इनके बालिका स्वरूप की कुछ ही झलकियां मिलती हैं। कालिंदी उपन्यास की कालिंदी का शैशव भी हरे भरे संपन्न उपमापूर्ण पारिवारिक वातावरण में बीता है, परंतु अन्य अनेक उपन्यासों में बालिकाओं का चित्रण यंत्रणापूर्ण स्थितियों में मिलता है। 14 फेरे की अहल्या के पिता सिद्धांत पांडे वैसे तो उद्योगपति थे, परंतु पत्नी नंदी को गवार और फूहड़ होने के कारण छोड़ रखा था। नंदी अपने गरीब भाई भौजी के साथ रहती थी, जिसके कारण बालिका अहल्या का शैशव अभाव में बीता था। अतः जब नंदी उसे लेकर उसके पिता के पास जाती है, तब अहल्या खाने पीने की चीजों पर टूट पड़ती है। उसकी माँ जब डांटती है, तब अहल्या कहती है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, पृष्ठ संख्या 105। हाँ, फिर मामा ने दालमोठ ले दी थी, बिस्कुट थोड़े ही ना ला दिए थे। आहा, इनके बीच मीठा भरा होगा। मुन्ना चुन्ना और दीपा आएंगे तो धुत्ता दूंगी सालों को। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ शिवानी, 14 फेरे, पृष्ठ संख्या 13। यहाँ पर लेखिका शिवानी ने बालिका अहल्या का चित्रण बाल सुलभ मनोवृत्तियों के अनुसार किया है। बाद में कर्नल शिवदत्त पांडे अहल्या को बोर्डिंग स्कूल में भर्ती करवा देते हैं। अतः अन्य सुख सुविधाएं तो उसे मिलती हैं, पर माता के प्रेम से वह वंचित रह जाती है। शिवानी के ही कैजा उपन्यास में एक 8 वर्षीय बच्ची पर बलात्कार करते हुए बताया गया है। बलात्कार करने वाला व्यक्ति सेप समेनियाट होता है और बाद में वह लड़की की हत्या भी कर देता है। हमारे संभ्रांत समाज में ऐसा कई बार घटित होता है। सफेद मेमने में भी बन्नों के शैशव की कुछ स्मृतियों को लिया गया है। बन्नों के माता पिता सन 47 के दंगों में मारे गए थे। बन्नों की मामी प्रायः बताती रहती थी कि किस निशंसता से उसकी माँ पर घृणित कार्य हुए थे। इदम नममा की मंदा का शैशव भी आतंक के साए में गुजरता है, क्योंकि जब वह छोटी थी तभी उसके पिता महेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई थी। तथापि मंदा को अपनी दीदी ब्रैकेट में बाऊ का स्नेह तो प्राप्त हुआ ही है। हाँ, माँ के प्रेम के लिए वह भी आजीवन तरसती रही। एक मुठ सरसों की देवकी भी एक ऐसी ही दीनहीन अनाथ बालिका है। उसकी माँ रेवती एक पति परित्यक्तता स्त्री थी। देवकी को जन्म देकर उसे पुरथुली आमा के आंगन में छोड़कर वह आत्महत्या कर लेती है। इस प्रकार देवकी की माँ का प्यार तो नहीं मिलता, परंतु पुरथुली आमा उसे बहुत जतन से रखती है। हिमांशु श्रीवास्तव कृत नदी फिर बहचली की नायिका पर्वतिया के बालिका किशोरी और युवती इन तीनों रूपों का चित्रण हुआ है। पर्वतिया कहार जाति की है। माँ की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, अतः बालिका पर्वतिया का शैशव अभाव और दुत्कारों में बीता था। सौतेली माँ उसे बहुत ही त्रास देती थी और बाप शराब में डूबा रहता था। कांच घर की माला और रत्ना के शैशव के कुछ चित्रों को दिया गया है। माला और रत्ना की माँ कावेरी बाई संच ब्रैकेट में तमाशा की औरत है, अतः उसके कई पुरुषों से संबंध रहते हैं। माला और रत्ना के बाल मानस पर इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। आधा गांव में मुस्लिम परिवार की कई छोटी छोटी बच्चियों की बात आई है, परंतु उनका जिक्र मुहर्रम में चलने वाली तैयारियों के संदर्भ में हुआ है। अतः वहाँ माहौल आनंद उमंग का होने के कारण हंसती खेलती कूदती फांदती तितलियों सी कुछ बालिकाओं की तस्वीरें मिलती है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि चर्चित ग्राम भित्तीय उपन्यासों में नारी के बालिका स्वरूप के विशद और विस्तार पूर्वक आकलन का अभाव सा दृष्टिगोचर होता है। ख किशोरिया पृष्ठ संख्या 105। 13-14 से 19-20 साल की अवस्था की लड़कियों को किशोरी अवस्था में रख सकते हैं। आधुनिक शब्दावली में इसे टीनेजर अवस्था भी कह सकते हैं। चर्चित ग्राम भित्ति उपन्यासों में ऐसी अनेक किशोरियों का चित्रण मिलता है। पृष्ठ संख्या 106। अनेक उपन्यासों में युवतियों, प्रौढ़ाओं और वृद्धाओं के जो चित्रण आए हैं, वहाँ कई बार उन स्त्रियों के किशोरी अवस्था के रूप भी मिलते हैं। नदी फिर बहचली की पर्वतिया, जल टूटता हुआ की बदमी और लवंगी, अलग अलग वैतरणी की कन्या, सूखता हुआ तालाब की लीला, चनैया समारिन, इमरतिया की इमरतिया, धरती धन्ना अपना की लक्षों और ज्ञानों, आधा गांव की सईदा, राग दरबारी की बेला, इदम नममा की मंदा आदि किशोरियां हमें चर्चित उपन्यासों में मिलती हैं। उम्र की यह एक ऐसी अवस्था होती है जब लड़कियों के स्त्रीत्व प्रकट होने लगता है, आंखों में सपने तैरने लगते हैं और लड़कों के प्रति आकर्षण की शुरुआत हो जाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसे एडोलेशन पीरियड कहते हैं। यही अवस्था होती है जब लड़कियों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, अन्यथा उनके पथ भ्रष्ट होने के खतरे होते हैं। पैराग्राफ चेन। नागार्जुन कृत इमरतिया उपन्यास की माई इमरती दास एक सधुआइन है। जमनिया मठ की अन्य सधुआइन ने यहाँ युवती और प्रौढ़ अवस्था की है। वहाँ इमरतिया में लेखक ने स्त्रीत्व को प्रकट होते हुए बताया है। मस्त राम के प्रति उसका जो आकर्षण है, उसे उपन्यास में कई स्थानों पर संकलित किया गया है। दूसरी सधुआइनों का जहाँ आश्रम के न्यस्त हितों के लिए उपयोग होता रहा है, वहाँ इमरतिया अभी बची हुई है। लेखक ने उसके मासिक धर्म का भी एक दो स्थानों पर उल्लेख किया है। इमरतिया में विपरीत लिंगी आकर्षण बढ़ रहा है। एक बार रसोई बनाने वाले महाराज की खुली जांग वह देख लेती है, तब उसके दिमाग में चकले पर महाराज की जांग बेलने की तरह चलने लगती है। पैराग्राफ चेंज। चर्चित उपन्यासों में पाई जाने वाली उक्त किशोरियों में से कईयों का जीवन संघर्षपूर्ण बताया गया है। उन्हें अपने परिवार के साथ आजीविका हेतु जद्दोजहद से गुजरना पड़ता है। पर्वतिया, नदी फिर बहचली, लवंगी बदमी, जल टूटता हुआ, चनैया चमारिन सूखता हुआ तालाब, लक्षो ज्ञानो धरती धन्ना अपना, चनूली एक टुकड़ा इतिहास, देवकी और रेवती एक मुठ सरसों, रमौती चिट्ठीर सेन, पर्वतिया लमंगी बदमी चनैया चमारिन लक्षो ज्ञानो चनोली देवकी रेवती रमौती आदि किशोरियों को अनेक मेहनत मजदूरी के काम करने पड़ते हैं। ग्रामीण परिवेशों में लड़कों की परवरिश में जितना ध्यान दिया जाता है उतना लड़कियों की परवरिश में नहीं दिया जाता, बल्कि एक तरह से उनकी अपेक्षा ही होती है और उन्हें चूल्हे चौके तथा खेती बाड़ी के कामों में लगा दिया जाता है। पैराग्राफ चेंज। ग्रामीण जीवन के निम्न जातियों की किशोरियों के जीवन का एक त्रासद कोना यह भी है कि कई बार उन्हें गांव के तथा कथित बड़े लोगों की वासना का शिकार होना पड़ता है। पानी के प्राचीर की गेंदा तथा चमेली के पीछे गांव भर के लड़के पड़े हुए हैं। सूखता हुआ तालाब की चनैया गांव के बड़े लोगों की वासना की शिकार होकर अविवाहिता अवस्था में ही गर्भवती हो गई है, परंतु ऐसी स्थिति में जहां गांव की उच्च जाति की लड़कियां गर्भ को गिरवा देती हैं, वहां चनैया गांव का बहिष्कार करते हुए अपने बच्चे को जन्म देने का साहस दिखाती है। जल टूटता हुआ की लवंगी भी एक स्थान पर कहती है, इन्वर्टेड कॉमा अपन, गांव की तमाम चमार लड़कियों पर हाथ साफ करने का अधिकार बाबा लोगों को मिला हुआ है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ जल टूटता हुआ पृष्ठ संख्या 353। पृष्ठ संख्या 107। धरती धन्ना अपना में अविवाहिता किशोरी लड़की लक्षो की इज्जत चौधरी हरनाम सिंह का भतीजा दिन दहाड़े लूटता है। स्थिति का एक पहलू यह भी है कि इसमें मंगू जो स्वयं चमार है आतताइयों का साथ देता है। पैराग्राफ चेंज। जहां ग्रामीण परिवेश में निम्न जाति की किशोरियों का दैहिक शोषण होता है, वहां दूसरी तरफ उच्च वर्गीय किशोरियां किशोरावस्था के उन्मादी प्रेम ज्वार में शारीरिक संबंध जोड़ती हुई दृष्टिगोचर होती हैं। जल टूटता हुआ कि पार्वती जो एक ब्राह्मण कन्या है अपने ही इलिया से प्रेम करती हुई पकड़ी जाती है। वह इलिया चमार जाति का है, अतः उसकी बहुत पिटाई होती है। सूखता हुआ तालाब की कालावती मास्टर धर्मेंद्र नामक व्यक्ति जो दूर के रिश्ते में उसका भाई लगता है से गर्व रहता है। गांव की एक दूसरी ब्राह्मण कन्या लीला रामदौना अहीर से फंसी हुई है। रामदौना की अनुपस्थिति में रविंद्र नामक एक अन्य लड़के से वह अपनी शारीरिक भूख मिटाती है। पैराग्राफ चेंज। वस्तुतः ग्रामीण परिवेश में टीनेजर अवस्था में ही लड़के लड़कियों में शारीरिक सम्मोहन बढ़ने लगता है, क्योंकि जिस उन्मुक्त परिवेश में वे रहते हैं उनमें जातीय जीवन की जानकारी या उसके प्रति समानता उनमें अपेक्षाकृत जल्दी आ जाती है। निम्न जाति की लड़कियां हमेशा दैहिक शोषण का भोग बनती हों ऐसा भी नहीं है, उनमें भी आकर्षण होता है, परंतु बाद में उनका दैहिक शोषण अधिक होता है। एक बात यहाँ उल्लेखनीय है कि उच्च वर्गीय लड़कियाँ चोरी छिपे प्रेम तो करती हैं, परंतु उसे स्वीकार करने की नैतिक हिम्मत का उनमें अभाव सा दिखता है। ऐन मौके पर कई बार वे फंसक जाती हैं। दूसरी ओर निम्न जाति की लड़कियाँ अपेक्षाकृत अधिक साहसी होती हैं। धरती धन्ना अपना की ज्ञानों को काली से प्रेम होता है, उससे उसे गर्व भी रहता है, परंतु जब उसका विवाह नहीं हो पाता तब वह आत्महत्या कर लेती है। रेणुकृत जुलियस में किशोरियों के दैहिक शोषण का एक दूसरा ही पहलू मिलता है। तालेवार गोड़ी अपने तंत्र मंत्र के आतंक द्वारा गांव की भोली भाली किशोरियों को अपनी वासना के जाल में फंसा कर साधना मार्ग की भैरवियां बनाता है। पैराग्राफ चेंज। गांव में शिक्षा का भी प्रायः अभाव रहता है। निम्न जाति की किशोरियों को तो शिक्षा नसीब ही नहीं होती। जो उच्च वर्ग की लड़कियां हैं वे भी प्रायः प्राथमिक या हाई स्कूल तक की शिक्षा ही पाती हैं। मनोरंजन के अन्य साधनों का भी अभाव होता है, अन्य युवाजन प्रवृत्तियों का भी अभाव है, अतः उनके जीवन की रिक्तता को भरने के लिए केवल जातीय जीवन की उत्तेजना मात्र ही रहती है। संक्षेप में कहा जाए तो ग्राम भित्तीय उपन्यासों में पाई जाने वाली बहुल्यांश किशोरियों का जीवन संघर्षपूर्ण एवं यातनापूर्ण होता है। ग युवतियां पृष्ठ संख्या 107। आलोच्य उपन्यास में पार्वती गीता शारदा बदमी जल टूटता हुआ की उग्नि उग्रतारा से गौरी लक्ष्मी इमरतिया उपन्यास से, बन्नो सूरजा जाटनी सफ़ेद मेमने से, तरुली मोतिमा मस्तानी चौथी मुट्ठी से, गायत्री देवी नागवल्लरी से, कालिंदी माधवी कालिंदी, चंदन और चरण भैरवी, नंदी अहल्या मल्लिका 14 फेरे, राधा कमला रूपा सूरज के आने तक, चनूली एक टुकड़ा इतिहास, निर्गुण नच्यो बहुत गोपाल, मंदा खिमुली भिमुली जैता हौलदार उपन्यास से, पटनहिया भावी दीपा अलग अलग वैतरणी से, दर्पणी बबूल उपन्यास, नर्मदेश्वर की भाभी उग्रतारा, मंदा इदम न मम, श्यामा उकाव, पर्वतिया नदी फिर बह चली तथा बीजना डोमनी मकान दर मकान उपन्यास से उपन्यास में उपलब्ध जैसी अनेक युवतियों के चरित्र उपलब्ध होते हैं। आलोच्य उपन्यास की कतिपय युवतियों का मार्ग अनेक कंटकों से भरा हुआ है। उन्हें अपनी जीवन यापन के लिए संघर्षों से गुजरना पड़ा है। उनके चरित्र बहुत ही तेजस्वी और जाज्वल्यमान बन पड़े हैं। उनमें भारतीय नारी को अग्रसित करने की क्षमता पाई जाती है। उग्नि, सूरजा चाटनी, मोतिमा मस्तानी, तरुली कालिंदी, चनूली, निर्गुण, मंदा, श्यामा, पर्वतिया आदि युवतियों की परिगणना हम इसके अंतर्गत कर सकते हैं। उग्नि बड़ी जीवट वाली युवती है। गांव के पुराने रूढ़िचुस्त लोग तथा पुलिस भी उसके इरादे को बदल नहीं सकते। भभीकन सिंह का गर्व होते हुए भी अंततः वह अपने प्रेमी कामेश्वर का वरण करती है। उसमें इस बात को लेकर कोई कुंठा भी विकसित नहीं होती। उग्नि में इस नई चेतना की संवाहिका के रूप में नर्मदेश्वर की भाभी की भूमिका महत्वपूर्ण है। मठिया सुंदरपुर के युवक युवतियों में वह चेतना के प्राण फूंक देती है। सूरजा जाटनी भी ऐसी ही एक मर्दानी युवती है। उसे पदाक्रांत करने की तमाम कोशिशें नाकाम होती हैं। पर्वतिया एक कहार जाति की युवती है, परंतु पति के कारावास के बाद भी वह किसी का आश्रय ग्रहण किए बिना अपने बच्चों को पालती पोसती है। इतना ही नहीं, गांव के नवयुवक दल से भी वह जुड़ती है और गांव में पारंपरिकता और रूढ़िचुस्तता के प्राचीरों को गिराने का उपक्रम भी करती है। एक टुकड़ा इतिहास की चनूली हरिजन होते हुए भी ब्राह्मण युवक से विवाह करती है और जहां उसका पति जात बिरादरी और पट्टीदारी के सम्मुख घुटने टेक देता है, वहां चनूली अंत तक संघर्ष करते हुए अपने समाज को उठाने के प्रयत्नों में लगी रहती है। जल टूटता हुआ की बदमी भी चमारिन होते हुए कुंजू नामक ठाकुर से विवाह करती है। इसके विपरीत नच्यो बहुत गोपाल की निर्गुण ब्राह्मण होते हुए भी एक मेहतर से विवाह करती है। इदम नममा की मंदा नितांत विपरीत स्थितियों में भी अपने अस्तित्व की लड़ाई को कुंद नहीं होने देती। इस उपन्यास की प्रेमा और कुसुमा भाभी भी जीवंत और प्राणवान चरित्रों में आती है। यहाँ पर प्रभा खेतान के इस अभिमत से सहमत हुआ जा सकता है कि जहाँ नगरीय परिवेश की अनेक उच्चवर्गीय स्त्रियों का चरित्र निस्तेज और लगघर सा दिखता है, वहाँ ग्रामीण परिवेश की इन युवतियों में जीवन का एक उन्मेष मिलता है। वे निर्द्वंद और कुंठा रहित प्रतीत होती हैं। संदर्भ ग्रंथ हंस पृष्ठ संख्या 88। पैराग्राफ चेंज। ग्रामीण परिवेश में कई बार युवतियों के दैहिक शोषण की समस्याएं सामने आती हैं। आधा गांव उपन्यास के अनेक सैयदजादे निम्न जातियों की स्त्रियों से शारीरिक संबंध रखते हैं। जल टूटता हुआ, सूखता हुआ तालाब, कांच घर, धरती धन्ना अपना आदि उपन्यासों में नारी जीवन के इस त्रासदी को लक्षित किया जा सकता है। मंदिरों, मठों और आश्रमों में धार्मिकता की ओट में स्त्रियों का दैहिक शोषण होता है। नागार्जुन कृत इमरतिया उपन्यास में लक्ष्मी गौरी जैसी अनेक सधुवाइनों का शारीरिक प्रयोग जमनिया मठ में होता है। मठ में निसंतान स्त्रियों को संतान प्राप्ति करने के लिए एक दुष्चक्र भी चल रहा है, जिसमें ग्रामीण समाज की अशिक्षित सरल भोली युवतियों को संतान प्राप्ति के लालच में फंसाया जाता है। पृष्ठ संख्या 109। प्रकटतः बाबा जी की सोटी का चमत्कार बताया जाता है, परंतु भीतरी स्थिति यह कि बाबा तथा मठ से जुड़े हुए सभी लोग इन स्त्रियों का लैंगिक शोषण करते हैं। भैरवी उपन्यास की चंदन और चरण एक अन्य आयाम को परिलक्षित करती हैं, जिसमें तंत्र साधना के नाम पर युवतियों को फंसाया जाता है। पैराग्राफ चीन। सफेद मेमने की बन्नो एक बेहद ठंडी स्त्री है। वह समलैंगिक है तो जल टूटता हुआ की दलवा, इमरतिया की गौरी, नच्चियो बहुत गोपाल की निर्गुण आदि ऐसी युवतियां हैं जिनमें शारीरिक वासना का परिणाम साधारण से अधिक पाया जाता है। ऐसी स्त्रियों को विपुल वासनावती या निनको कहा जाता है। गौरी साल में कई कई मर्द बदलती है और उसके ही शब्दों का प्रयोग करें तो गरमाए हुए घोड़े को भी शांत करने की कबूत वह रखती है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि आलोच्य उपन्यासों की प्रस्तुत कोटि में आने वाली नारियां प्रायः संघर्षशील एवं जुझारू है। संघर्षशील का यह परिणाम निम्न जाति की स्त्रियों में अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। घ प्रौढ़ाएं। पृष्ठ संख्या 109। आलोच्य उपन्यास में ग्रामीण परिवेश की कुछ प्रौढ़ाओं का भी चित्रण हुआ है। इन प्रौढ़ाओं में धरती धन्ना अपना की प्रीतो ताई निहाली, कांच घर की कावेरी बाई सखुबाई, सांप और सीढ़ी की फूलो आता, 14 फेरे की सुभ्रता ताई, भैरवी की राजेश्वरी माया तथा विष्णुप्रिया, मकान दर मकान की रानी शाह, पानी के प्राचीर की रूपा, जल टूटता हुआ की जमुना बनवारी की पत्नी, सफ़ेद मेमने की बन्नो की मामी, हौलदार की लक्ष्मा, चौथी मुट्ठी की मोतिमा मस्तानी और कौंसिला, कालिंदी की अन्ना और शीला आदि प्रौढ़ महिलाओं के चरित्र सविशेष रूप से परिलक्षित होते हैं। यहाँ यह ध्यातव्य रहे कि उक्त प्रौढ़ाओं में से कुछ एक प्रौढ़ाओं का चरित्र उनके युवती रूप तथा वृद्धावस्था के भी मिलते हैं। पैराग्राफ चेंज। प्रीतो और ताई निहाली घोड़े वहाँ गांव की चमारन स्त्रियां हैं। युवावस्था में गांव के चौधरियों द्वारा उनका जातीय शोषण हुआ था। कांच घर की कावेरी बाई संच या तमाशा की औरत है। युवानी में उसके जीवन में कई पुरुष आते हैं, क्योंकि उपन्यास के ही पात्र के शब्द में संच की औरत पंचायत का दफ्तर होती है। अब वह अपने ग्रुप के संच का संचालन कर रही है। इसी उपन्यास की सखुबाई घरेलू औरत होते हुए भी अपने देवर मुकुंद राव से अपनी शारीरिक भूख मिटाती है। वस्तुतः सखुबाई के कारण ही रत्ना का घरू औरत विषयक मोह भंग होता है। इसके पूर्व संज की औरतों को वह नहाने का पानी और घरू औरत को पीने का पानी समझती थी, परंतु सखुबाई का चरित्र उसके इस काल्पनिक एवं सम्मोहक भ्रम को तोड़ देता है। सांप और सीढ़ी की फूलो आता एक कमन सीब औरत है। गांव के लोग उस पर टोहनी होने की तोहमत लगाते हैं। 14 फेरे की सुभ्रता ताई एक उज्जड़ और मुफट औरत है। वह किसी की परवाह नहीं करती। शिवदत्त पांडे जो कई फैक्ट्रियों के मालिक हैं, उनको भी वह आड़े हाथों लेती है। उनका व्यक्तित्व रौबीला है। इसके कारण ही 3-3 पढ़ी लिखी सुशिक्षित बहुओं पर अपना रुबाव जमाए हुए रहती है। भैरवी उपन्यास की राजेश्वरी एक सुसंपन्न भद्र तथा आधुनिक महिला है। पृष्ठ संख्या 110। उनकी बहुएं भी उनके सामने जींस पहनकर आती हैं। इसी उपन्यास की माया विधवा होकर भी एक नाथपंथी साधु के घर जा बैठती है। प्रयाग के कुंभ मेले में स्वामी भैरवानंद से आकृष्ट होकर उनके अखाड़े में आ गई थी। वह स्वामी भैरवानंद की भैरवी थी तथा अखाड़े की सर्वे सर्वा थी। विष्णुप्रिया वैष्णव संप्रदाय की एक साध्वी है। उपन्यास में संकेतित हुआ है कि इन दोनों महिलाओं के उनके गुरुओं से शारीरिक संबंध रहे हैं। जल टूटता हुआ की जमुना तथा बनवारी की पत्नी व्यवहार कुशल गृहस्थ महिलाएं हैं। सफेद मेमने में निरूपित बन्नो की मामी एक ठंडी और लेस्बियन किस्म की औरत है। हौलदार की लक्ष्मा में हमें पहाड़ी ग्रामीण परिवेश की घरेलू व्यवहार कुशल स्त्री के दर्शन होते हैं। आधा गांव की कुलसुम एक मुस्लिम महिला है। उसके पति कुन्नन मियाँ का स्वभाव बड़ा तेज है, परंतु उपन्यास में उनके सुखी दाम्पत्य जीवन के कई प्रसंग मिलते हैं। चौथी मुट्ठी की मोतिमा मस्तानी एक जुझारू एवं संघर्षशील महिला है। जीवन में पुरुषों के हाथों वह कई बार ठगी गई है। अपने बच्चों को पालने के लिए रात को तेल और कालिख लगाकर नंगी होकर चुड़ैल वेश में बाहर निकलकर छोटी मोटी चोरियों से अपने बच्चों का पेट पालती है। अंत में इन्हीं बच्चों के कारण नटवर पंडित के घर जा बैठती है। जीवन की समस्याओं से जूझने का ताव उनमें मिलता है। इसी उपन्यास की कौंसिला भी पुरुष सत्ताक समाज के शोषण का शिकार है। कौंसिला के द्वारा हम इस तथ्य से अवगत होते हैं कि पहाड़ों में नारियों का शोषण कितने और कैसे कैसे तरीकों से होता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि आलोच्य उपन्यासों में प्रौढ़ महिलाओं का जो चित्रण मिलता है उनमें विभिन्न परिवेश और स्तर की महिलाएं मिलती हैं। उनमें से अधिकांश प्रौढ़ाओं का जीवन संघर्षपूर्ण रहा है।